السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی انشاءاللہ آج ہم ریویژن کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ تھرڈ چیپٹر نون ساکنہ میم ساکنہ اس چیپٹر کی ریویژن سٹارٹ کریں گے. اوکے, سب سے پہلے ہم نون ساکنہ کے رولز کی ریویژن شروع کرتے. جیسا کہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین یہ دو ایسے گروپس ہیں جن کے تمام احکامات سیم ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دیکھیے کہ ان دونوں کے اندر سملیرٹیز کیا کیا ہیں, یا نون ساکنہ کیا ہے اور تنوین کیا ہے. سو نون ساکن بیسیکلی ایک ایسا حرف ہے جو کہ سکون کے ساتھ ہے. نون جب بھی سکون کے ساتھ آئے گا, یعنی اس کے اوپر فتحہ کسرہ یا ضمہ اگر موجود نہیں ہے, تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے. اسی طرح سے جو تنوین ہے وہ کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ایک سمبل ہے حرکات کا, فتحہ تان کسرہ تان ضمہ تان. تو یہ لیٹر نہیں ہے لیکن ایک سمبل ہے حرکات کا. اس کے اندر بھی نون ساکن کی آواز ہوتی ہے. جب بھی آپ فتحہ تان کسرہ تان یا ضمہ تان بولتے ہیں, جیسے بدن بیدن بودن, تو اس کے اندر بھی نون ساکن کی آواز ہوتی ہے. اور یہ جو نون ساکن ہے یہ آڈیبل ہے, ویزیبل نہیں ہے. جو نون ساکن اوریجنل ہوتا ہے وہ ویزیبل ہوتا ہے, آپ حرف کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن تنوین کے اندر جو نون ساکن پریزنٹ ہوتا ہے وہ آڈیبل ہوتا ہے, وہ ویزیبل نہیں ہوتا. آپ سن تو سکتے ہیں پر آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو. پھر اسی طرح سے کہ نون ساکن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ورڈ کے کہیں پر بھی آ سکتا ہے, سینٹر میں آ سکتا ہے, مین ہوم جس طرح سے ورڈ کی اینڈنگز کے اندر آ سکتا ہے. تو اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ کہاں پر موجود ہوگا, جبکہ تنوین ہمیشہ ورڈ کے آخر میں آتی ہے. آپ کو تنوین کہیں پر بھی ورڈ کے سینٹر میں, مڈل میں, بگننگ میں کہیں پر نہیں نظر آئے گی, جبکہ نون ساکن کسی بھی جگہ کے اوپر آ سکتا ہے. اسی طرح سے تنوین نون ساکن کسی طرح کے ورڈ میں آ سکتا ہے, ٹائپ آف ورڈ میں آ سکتا ہے, یعنی اسم میں آ سکتا ہے نون ساکن, ورڈ میں آ سکتا ہے, فعل میں آ سکتا ہے, حرف میں آ سکتا ہے. تو نون ساکن کہیں پر بھی موجود ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کے ورڈ میں. جبکہ تنوین کو اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ تھوڑی بہت گرامر جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس چیز کا کہ تنوین اسم کا ایک سمبل ہے. قرآن پاک میں موسٹ آف دا ٹائم تنوین اسم کے اینڈ میں آئی ہے. صرف تین ایسے ورڈز ہیں جن کو ہم ایکسپشنل کیسز کہتے ہیں, جو ورڈز ہیں یا جو اسم نہیں ہیں اور ان میں تنوین کی موجودگی ہے, اور اس میں بھی پھر جو لوگ قرآن پاک کے اندر پونڈر کرتے ہیں وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس میں بھی بہت حکمت ہے, لیکن وہ بہت فیو ورڈز ہیں اور ان کی ڈیٹیلز میں جانے کا ابھی موقع نہیں ہے. انشاءاللہ لیٹر ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے. لیکن عموماً آپ یہ کہہ سکتے 99% قرآن پاک میں تنوین اسم کی علامت ہے اور اسم ہی کے اندر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک کمپیرزن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے احکامات آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, کیونکہ دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. ایک ویزیبل نون ہے اور دوسرا آڈیبل نون ہے. ایک اور ان کے اندر ڈفرینس پایا جاتا ہے, وہ یہ کہ جو نون ساکن ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اگر ورڈ کے اینڈ میں آ رہا ہے, جیسے من کانا, من آ رہا ہے ورڈ, تو اگر آپ ملا کے پڑھے تبھی وہ قائم رہے گا, اور اگر آپ اسٹاپ کر لیں تبھی وہ قائم رہے گا. جبکہ جو تنوین کا نون ہے وہ صرف اور صرف ملا کر پڑھنے میں قائم رہتا ہے, وصل میں ملا کر پڑھنے میں قائم رہتا ہے, اسٹاپ کرنے میں وہ ہمیشہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل غفورون رحیمون, اور جب آپ اس کو اسٹاپ کرتے ہیں تو آپ کیسے کرتے ہیں, غفور رحیم, تو رحیمون وہ جو نون تھا آڈیبل اب وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو نون ساکن تنوین کے اندر پایا جاتا ہے یہ صرف اور صرف ملا کر پڑھنے میں قائم رہتا ہے, اور یہ وقت کی صورت میں ڈلیٹ ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے چار پاسبل طریقے ہیں. صحیح, چار طریقے ہیں جس سے آپ نون ساکن اور تنوین کو پڑھ سکتے ہیں, اور یہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے. اور ان چار طریقوں کے کیا نام ہیں؟ اظہار، ادغام، اقرار اینڈ اخفاء. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اظہار. اظہار ورڈ ظاہر سے ہے کسی بھی حرف کو. نون ساکن کی ہم بات کریں گے تو نون ساکن ہوگا، لیکن حرف کو اس کے مخرج سے اس کی تمام کوالٹیز کے ساتھ بولنا اظہار کہلاتا ہے. جب آپ نون ساکن کی بات کرتے ہیں تو نون ساکن کو اس کے مخرج سے، کیا ہے اس کا مخرج؟ ٹپ آف ٹنگ اور سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے گمز کا ابھار، جو ابھرا ہوا حصہ وہاں پر. تو نون ساکن کو اس کے مخرج سے اس کی تمام کوالٹیز کے ساتھ بولنا نون ساکن کا اظہار ہے. اور یہ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن کے بعد سکس لیٹرز آ جائیں. اور یہ سکس لیٹرز کون سے ہیں؟ حروف الحلقیہ، حلقی لیٹرز جو حلق سے آتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا اینڈ غین خا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جاتے ہیں تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اظہار. اور اس اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار الحلقی. حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حلقی حروف کی وجہ سے نون ساکن کا یہ اظہار ہو رہا ہے. ایون تنوین میں بھی، اگر تنوین ہے آپ کے پاس اور تنوین کے بعد ان سکس ورڈز میں سے کوئی حرف آیا ہے تو ہم وہاں پر تنوین میں پائے جانے والے نون کا اظہار کرتے ہیں. اور نون کیا ہو جاتا ہے؟ مظہر، یعنی پرومیننٹ ہو جاتا ہے، نون کلیئرلی پڑھا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل سواؤن علیہم، تو یہاں پہ آپ دیکھیں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے. سواؤن علیہم، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ نون کو اس کے مقصد سے اس کی تمام کوالٹیز کے ساتھ بولیں گے کیونکہ اس کے بعد عین آ رہا ہے. پھر اسی طرح سے جو اظہار الحلقی ہے وہ ایک ورڈ کے بیچ میں بھی ہوتا ہے، یعنی ورڈ کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے اور دو ورڈز کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی سواؤن علیہم کی، اسی طرح سے ورڈ ہے عذابون عظیم. تو یہ جو عذابون عظیم ہے یہ بھی دو ورڈز کے ایگزامپل ہے. اور ایک ورڈ میں جیسے فار ایگزامپل ورڈ آتا ہے مین ہوبم، تو جب یہ ملا کے رکھے جاتے ہیں تو ایک ورڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو اظہار ہو رہا ہے وہ ودن ا ورڈ ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں اظہار الحلقی کی، یہ آپ کو ایک ورڈ کے اندر بھی مل سکتی ہیں اور دو ورڈز کے بیچ میں بھی مل سکتی ہے. صحیح، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب سکس حروف حروف الحلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے ہم اظہار الحلقی کہتے ہیں. اور نون مظہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پرومیننٹ پڑا جاتا ہے. اور یہ ودن ا ورڈ بھی ہوتا ہے، ٹو ورڈز میں بھی ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے، سیکنڈ حکم، اسے ہم کہتے ہیں ادغام. اگر ہم ادغام کو دیکھیں کہ ادغام کا کیا مطلب ہے، ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ورڈ کو جنرلی دیکھیں. ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج ہو جانا، مکس ہو جانا، ٹھیک ہے، مدغم، مکسنگ. اور اگر ہم نون ساکن کا ادغام دیکھیں تو جب نون ساکن کی مرجنگ ہوتی ہے، اس مرجنگ کے اندر اظہار کا آلموسٹ اپوزٹ ہے. اظہار میں کیا تھا؟ نون اپنے مخرج سے اپنی تمام صفات کے ساتھ بولا جائے گا. اب نون اس کے اندر، اس کے اندر جو حرف مرج ہوتا ہے وہ اپنا مخرج تو ڈیفینیٹلی چھوڑتا ہے، یعنی فور شور مخرج تو نہیں رکھے گا، کبھی بھی نہیں، وہ ہمیشہ سیکنڈ لیٹر کا مخرج بولا جائے گا، اپنا مخرج تو فور شور چھوڑے گا. لیکن سم ٹائمز اپنی کچھ کوالٹیز رکھتا ہے اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اپنی تمام کوالٹیز بھی ختم کر دیتا ہے، کمپلیٹلی سیکریفائز آپ کہہ سکتے. تو اگر نون ساکن کے کیس میں دیکھیں تو بھی ہمیں اسی طرح سے ملتا ہے کہ ادغام جب ہوتا ہے تو نون ساکن سم ٹائمز ہمیشہ اپنا مخرج چھوڑے گا اور سم ٹائمز اپنی تمام کوالٹیز چھوڑ دیتا ہے، اور سم ٹائمز اپنی کچھ کوالٹیز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے. اس صورت میں جب آپ ادغام کرتے ہیں تو آپ جو نیکسٹ لیٹر ہے اس کو پڑھ رہتے ہیں ٹو ٹائمز. اب ایکچولی نون ساکن کو آپ ایک طرح سے نہیں پڑھیں گے، لیکن نیکسٹ لیٹر ڈبل ہو جائے گا. اور یہ ڈبل، نیکسٹ لیٹر ڈبل کیوں ہوتا ہے؟ ادغام ہی کی وجہ سے. ہمیشہ نہیں، لیکن جب ادغام آ رہا ہے اور نیکسٹ لیٹر ڈبل ہو رہا ہے تو ادغام کی وجہ سے نیکسٹ لیٹر ڈبل ہو رہا ہے. इसमें हमारे पास एक्चुअली दो तरह से हम इदगाम की कैटेगराइजेशन करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स देखते हैं। इदगाम गुन्ना के एतबार से कैटेगराइज किया जाता है और इदगाम इत्माम के एतबार से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, गुन्ना के एतबार से बाज़े का आप इदगाम करते हैं नून साकिन का, सिक्स लेटर्स में इदगाम होता है, यरमलून या रौ नीम लाम वाव नून, तो नून साकिन या तिन्मीन के बाद अगर ये सिक्स लेटर्स आ रहे हैं तो नून साकिन का इदगाम होगा। बाज़े का ये इदगाम गुन्ना के साथ होता है, यानी नेज़ल सामदारी, बाज़े का ये इदगाम गुन्ना के बगैर हो रहा है। ठीक है, गुन्ना उसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी आप जब उसमें इदगाम करें हैं समटाइम्स तो क्या होता है कि उसके अंदर गुन्ना की आवाज आपको नहीं आती, और समटाइम्स क्या होता है गुन्ना की आवाज आपको आती है। जैसे सूरतुल बकरा में वर्ड आते हैं औ कसयिबिन मिनस्समा, तो आप देखिए कसयिबिन, यहाँ पे वर्ड क्या है कसयिबिन, ठीक है कसयिबिन तन्वीन, और उसके बाद क्या है कसयिबिन मी मीम, तो नून यानी तन्वीन के बाद, तन्वीन के अंदर भी एक नून प्रेजेंट है, उसके बाद मीम आ गया। तो नून जो है अब मीम के अंदर मर्ज हो जाएगा कसयिबिन मिनस्समा, और ये जो इदगाम है ये नेजल साउंड के साथ हो रहा है। तो आप इसको जब बोलते हैं तभी आप इसको सुन भी सकते हैं, और फोर लेटर्स में नेजल साउंड के साथ इदगाम होता है। यरमलून में से फोर ऐसे लेटर्स हैं जिनमें गुन्ना के साथ इदगाम होता है, और वो फोर लेटर्स कौन से हैं, मीम नून वाउ एंड या, मीम नून वाउ एंड या। तो जब भी नून साकिन या तन्वीन के बाद इन फोर लेटर्स में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम गुन्ना के साथ होता है, नेज़ल साउंड आपको सुनाई देगी। ये गुन्ना नून का भी हो सकता है जिसको हम बाद में देखेंगे, इत्माम में देखेंगे कि क्या ये गुन्ना नून का था या ये नेक्स्ट लेटर का था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नून का गुन्ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि नून ने अपना गुन्ना तो छोड़ दिया और नेक्स्ट लेटर का गुन्ना हो, सही, ये हम बाद में देखते हैं। जैसे सूरतुल इंसान में वर्ड आता है मीन नुत्बोफा, तो मीन नून साकिन के बाद अनदर नून नुत्बोफा, तो यहाँ पे जो इदगाम हो रहा है वो गुन्ना के साथ हो रहा है। इसी तरह से सूरतुल इंसान आयत नंबर 3 में वर्ड आता है शाकिरुन व इम्मा, तो शाकिरुन तन्वीन के बाद वाव आ रहा है, तो यहाँ पे जो इदगाम हो रहा है ये भी नेज़ल साउंड के साथ हो रहा है शाकिरुन व इम्मा। तो इस इदगाम को हम कहते हैं इदगाम बगुन्ना। और जो दो लेटर्स पीछे रह गए, फोर लेटर्स में तो बगुन्ना इदगाम हो गया, कौन कौन से लेटर्स, नून मीम वाव एंड या, जो दो लेटर्स पीछे रह गए उनमें भी गैर गुन्ना इदगाम होता है, और वो दो लेटर्स कौन से हैं, गुड रॉ एंड लाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलुमातिन ला, तो यहां पर तन्वीन के बाद क्या है, लाम है। अब हम यहां पर गुन्ना नहीं करेंगे गुलुमातिल्ला विदाउट नेजल साउंड। इसी तरह से गफूरुन रहीम, तो अब यहाँ पे देखिए रुदन यानी तन्वीन के बाद रो आ रहा है, तो जब आप इसको मर्ज करेंगे तो आप गुन्ना नहीं करेंगे, कैसे पढ़ेंगे गफूरुर रहीम विदाउट गुन्ना गफूरुर रहीम। तो रो और लाम ये दो ऐसे हरूफ हैं जिनमें इदगाम बगैर गुन्ना होता है। अब हम आ जाते हैं इदगाम की डिस्ट्रीब्यूशन इत्माम के एतबार से। इत्माम का क्या मतलब है, इत्माम का मतलब है कि क्या नून साकिन यानी जो मुदगम लेटर है क्या वो अपनी तमाम क्वालिटीज छोड़ देगा या मखरज तो छोड़ेगा, इदगाम तभी होगा जब अपना मखरज छोड़ेगा। ठीक है, क्या वो इदगाम करते वक्त अपनी तमाम क्वालिटीज छोड़ देगा या कुछ क्वालिटीज छोड़ेगा और कुछ बाकी रखेगा। तो ये जो चीज है कि नून साकिन क्या कंप्लीटली नेक्स्ट लेटर के अंदर मर्ज हो जाता है या पार्शली नेक्स्ट लेटर के अंदर मर्ज होता है। पार्शली मतलब ये कि अपनी उसने अपनी कुछ क्वालिटीज रखी हुई है और पूरी तरह से अपने आप को खत्म नहीं किया, तो वो इदगाम क्या कंप्लीट इदगाम है या पार्शल है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमें इत्माम से पता चलती है, और इसको हम कहते हैं इदगाम कामिल और इदगाम नाकिस। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इंशाल्लाह बुक 2 में हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इदगाम कामिल और नाकस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होगा तो उस वक्त आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इदगाम कामिल और नाकस, इदगाम कामिल क्या है कि नून साकिन अपना तमाम क्वालिटीज, अपनी तमाम क्वालिटीज छोड़ दी, मखरज तो डेफिनेटली छोड़ा, और ये भी फोर लेटर्स में इदगाम होता है जो कामिल इदगाम है। ये कौन कौन से फोर लेटर्स में होते हैं? मीम में, नून में, रॉ में, लाम में। जब नून साकिन या तिनमीन के बाद मीम, नून, रॉ, लाम, इन फोर लेटर्स में से कोई भी हर्फ आ जाए, साकिन अपना मखरज और अपनी तमाम क्वालिटीज छोड़ देता है और नेक्स्ट लेटर में कंप्लीटली मर्ज हो जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कि नून आप एक तरह से पढ़ ही नहीं रहे, आप पूरी तरह से नेक्स्ट लेटर दो दफा पढ़ें। जैसे आई नंबर वन में वर्ड आ रहा है ही नून इन अद्दहर, आप देखिए ही नून, वो नून बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है, ही नून इन अद्दहर। और ये जो यहाँ पे गुन्ना हो रहा है ये नून का नहीं है, नून ने अपना गुन्ना भी छोड़ दिया, ये मीम का अपना गुन्ना है। और हम जानते हैं कि मीम के अंदर भी गुन्ना की सिर्फ पाई जाती है, गुन्ना की क्वालिटी पाई जाती है, तो यहाँ पे गुन्ना मीम का है, नून का नहीं है। तो यहाँ पर जब तमीन के बाद मीम आ गया तो ये नून की गुन्ना की क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे ये मीम की अपनी क्वालिटी है, नून बिल्कुल कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं ड्रॉप हो गया और उसने मीम को डबल कर दिया। ड्रॉप मीन्स कि वो मुदगम मीम के अंदर मिक्स हो गया, आपको मीम सुनाई दे रहा है, नून नहीं सुनाई दे रहा। हे नून मीन दहम सही अन मजकूर, तब यहाँ पे भी देखें अन नून बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसके बाद भी नहीं मारा। मिन लुतबोफा, यहाँ पर भी पहला नून आप नहीं बोल रहे, लुतबोफा सेकेंड नून बोल रहे, ठीक है। और इसका प्रूफ क्या है कि आप देखिए, ये भी तो कह सकते हैं आपसे, नहीं हम तो नून बोल रहे हैं, अब आपको क्या पता हम पहला बोल रहे हैं या दूसरा बोल रहे हैं। इसमें इसका जो प्रूफ है ना वो ये कि आप सेकेंड नून बोल रहे हैं और फर्स्ट नून नहीं बोल रहे, सेकेंड नून बोला जा रहा है। इसका प्रूफ ये है कि अगर आप फर्स्ट नून बोलें तो इट शुड बी लाइक दैट मेन नोट बोफा, फिर आपको इतना लंबा गुन्ना करने की जरूरत नहीं है। मेन आपने नून को बोला, नो आपने नू को बोला, तो आप थोड़ा थोड़ा गुन्ना करें। लेकिन जब आप मेन नोट बोफा बोलते हैं तो इसका मतलब है दगाम पूरी तरह से नून नेक्स्ट लेटर के अंदर चला गया, जब आपने लॉन्गर गुन्ना किया, राइट। अगर आप पहला नून बोले पूरी तरह तो आपको इतना लंबा गुन्ना करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि नून साकिन के बाद अगर नून आता है तो वो भी कामिल इदगाम है, यानी पूरी तरह से नून ने अपनी अपना आप अपना मखरज अपनी क्वालिटीज छोड़ दी और एक्चुअली हम सेकंड नून दो दफा बोल रहे हैं। और यही चीज आपको मुसहफ में नजर भी आती है कि सेकंड नून के ऊपर तजदीद आपको नजर आती है, ठीक है। तो ये तजदीद जो है ये इसी चीज की अलामत होती है कि सेकंड नून दो दफा बोला जा रहा है। तो ये क्या है? इदगाम कामिल। इदगाम कामिल कहाँ कहाँ हो रहा है? मीम नून में, जिनकी एग्जाम्पल्स हमने देख ली, रोलाम में। और रोलाम की एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, गोलोमा, सिल्ला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आपको नून की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ऊपर वाले दो एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज गुन्ना सुनाई दे रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसके लिए आपको ये बात पता होना जरूरी है कि जो गुन्ना आपको सुनाई दे रहा है वो नून का अपना नहीं है, वो नेक्स्ट लेटर का, यानी मुदगम लेटर का नहीं है, मुदगम फी जिसमें आप इदगाम हो रहा है उस लेटर का इदगाम, उसका गुन्ना है। नून ने अपना गुन्ना छोड़ दिया, नून अपना गुन्ना नहीं करा, नेक्स्ट लेटर का गुन्ना है ये। तो गुनु मिल्ला, इसके अंदर तो आप देखें आपको सुनाई दे रहा है कि नून बिल्कुल भी उसकी आवाज नहीं आ रही, और लाम दो दफा पढ़ा जा रहा है, तो ये भी कामिल इदगाम है। फिर इसी तरह से आप देखिए गफूर रहीम, तो इसमें भी आपको नून बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, तो ये भी कामिल इदगाम है, नून कम्प्लीटली मर्ज हो गया नेक्स्ट लेटर के अंदर। तो ये जो इदगाम है ये कामिल है, नून के साथ, मीम के साथ, नून साकिन के बाद अगर नून मीम और रॉ लाम आ जाए तो नून साकिन अपना मखरज और अपनी तमाम क्वालिटी छोड़ के नेक्स्ट लेटर के अंदर मर्ज हो जाता है। फिर नाकिस जो इदगाम है, अगर नून साकिन या तमीम के बाद दो हरूफ वाव और या अगर ये आ जाते हैं तो इदगाम नाकिस होता है। नाकिस अब क्या इदगाम है कि नून अपनी कुछ क्वालिटीज छोड़ देगा और गुन्ना की क्वालिटी रखेगा, गुन्ना अपने साथ रखेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि वाव और या में ये होता है, जैसे सूरह अल-इंसान ही है, आयत नंबर 3 में देखिए शाकिरौ व इम्मा। अब जब आप ये मर्जिंग करते हैं तो आप करते हैं शाकिरौ नेजल साउंड के साथ, अब वाव के अंदर तो कोई नेजल साउंड नहीं है ना, कि हम ये कहें कि वाव की नेजल साउंड है, तनमीन की नहीं, नहीं, वाव के अंदर कोई नेजल साउंड नहीं है, उसकी क्वालिटी नेजल साउंड नहीं है। तो ये जो नेजल साउंड आ रही है ये नून की आ रही है, पीछे से तनमीन की आ रही है, शाकिरों व इम्मा, ठीक है। तो यहां पर जो नेजल साउंड है वो नून की है, नून ने अपना मखरज तो छोड़ दिया मगर अपनी क्वालिटीज में से गुन्ना की क्वालिटी को मर्जिंग के दौरान भी रखा, इसलिए ये नाकस इदगाम है, इनकम्प्लीट मर्जिंग हम इसे कहते हैं, नाकस इदगाम, पूरी तरह से नून मर्ज नहीं हुआ। अगर नून पूरी तरह मर्ज होता तो इसकी साउंड होती शाकिरो व इम्मा, फिर हमें नून की कोई आवाज ना सुनाई देती। अब हमें नून की आवाज सुनाई दे रही है, शाकिरो व इम्मा, ठीक है। इसी तरह से वर्ड आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मन यालम, उसमें भी मन यालम आप क्या करते हैं, नून का मखरज तो छोड़ देता है नून अपना, लेकिन अपनी गुन्ना की क्वालिटी कायम रखता है और या के साथ मर्ज होते हुए गुन्ना के साथ मर्ज होते हैं, मन यालम, राइट। अगर हम पूरे इदगाम को, अब इदगाम के हमने इसको गुन्ना के साथ कैटेगराइज कर लिया, इस्माम के साथ कैटेगराइज कर लिया, अब आप देखें कि ऐसा जब भी हम इदगाम को देखेंगे ना, तो हमारे पास इदगाम ऐसा टाइम ऐसा होगा कि इदगाम के अंदर गुन्ना भी हो रहा होगा, या वो कामिल होगा या वो नाकिस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इदगाम सिर्फ गुन्ना के साथ आप पहले देखेंगे और कुछ इदगाम सिर्फ गुन्ना के साथ होंगे और कुछ इदगाम में कामिल ना के साथ देखेंगे, ऐसा नहीं है, एट अ टाइम सारी चीजें हो रही होंगी। तो अगर हम फिर इन दोनों कैटेगराइजेशन को मर्ज कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं इदगाम की। नंबर वन, इदगाम बगुन्ना कामिल, यानी इदगाम बगुन्ना है, नेजल साउंड के साथ है और कंप्लीट है, और ये कब होता है जब नून साकिन और तनवीन के बाद नून और मीम आ जाए, तो बगुन्ना भी होगा और कामिल भी होगा, ठीक है। इदगाम बगुन्ना कामिल कब, जब नून साकिन और तनवीन के बाद नून और मीम आ जाए। इदगाम बगुन्ना नाकिस, यानी गुन्ना तो है मगर अब इनकम्प्लीट मर्जिंग है, और ये कब होता है जब नून साकिन और तनवीन के बाद वाव और या आ जाए, तो बगुन्ना इदगाम होगा, नेजल साउंड होगी मगर नाकिस होगा, इनकम्प्लीट होगा। और थर्ड कैटेगरी कौन सी बनती है, बेगैर गुन्ना कामिल, इदगाम बेगैर गुन्ना कामिल, यानी इदगाम बगैर नेजल साउंड के है और कंप्लीट है, ठीक है। नून साकिन ने अपनी तमाम क्वालिटीज छोड़ दी, और ये कब होता है जब नून साकिन और तनवीन के बाद रॉ या लाम आ जाए। एक और पॉसिबल ऑप्शन बनती है मगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, बेगैर गुन्ना नाकिस वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि इदगाम बेगैर गुन्ना भी हो और नाकिस भी हो। बगुन्ना कामिल, बेगैर गुन्ना कामिल और बगुन्ना नाकिस, ये तीन कैटेगरीज हमारे पास बन जाती है। ओके, अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इदगाम के, अनलाइक इजहार, इदगाम जो नाकिस है ना वो इनकम्प्लीट मर्जिंग है और ये वाव और या में होता है, हमेशा गुन्ना के साथ होगा, तो गुन्ना कहाँ से आएगा, नून की क्वालिटी से आएगा, ठीक है। जैसे ये सूरत इंसान में वर्ड जा रहे ना, शाकिरों व इम्मा, फिर असल व औला लौं व सईरा, तो ये जो वर्ड है आइनैन यशरबू, ये असल में क्या है कि आप मिलाते तो हैं मगर जो मर्जिंग है ना वो ऐसे हो रहा है कि मुकम्मल नहीं हो रही, नून पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा, अगर पूरी तरह से खत्म हो जाए तो साम क्यों आए, आई नई यशरब, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। जैसे गफूर और रहीम में पूरी तरह से मर्ज हो रहा है ना, तो वहां पे आपको नून की आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से मर्ज नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको नून की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये नून कहाँ से आ रहा है, ये नून साकिन ने अपना गुन्ना नहीं छोड़ा, ये जो नून की आवाज आ रही है ना 50% गुन्ना होता है 50% नेक्स्ट लेटर होता है, तो ये जो गुन्ना की आवाज आ रही है ये नून साकिन ने नहीं छोड़ी, नून साकिन ने कायम रखा है, इसलिए ये इसके साथ कायम है, आई नई, ठीक है। इसमें फिर आपने ये चीज याद रखी है कि इजहार में हमने जैसे बात की थी ना कि ये दो हरूफ में विद इन अ वर्ड भी होता है, यानी हर एक वर्ड के बीच में भी हो रहा है इजहारुल हलक़, और टू वर्ड्स में भी हो रहा है, जबकि अगर हम इदगाम को देखें तो इदगाम सिर्फ और सिर्फ टू वर्ड्स में होता है, कभी भी विद इन अ वर्ड आपको इदगाम नून साकिन के इदगाम की कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी, एक लफ्ज के बीच में इदगाम एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा दो वर्ड्स के बीच में होता है, ठीक है। कुरान पाक में 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें वर्ड के बीच में नून साकिन के बाद यरमलून में से हरूफ आए हुए हैं, लेकिन वहां पर इदगाम नहीं होता, सही। और उसको हम कहते हैं इजहार मुतलक, ये आपने याद रखना है, इजहार मुतलक। और ये फोर वर्ड्स कौन से हैं? अदुनिया, बुनियान, फुनवान, फुनवान एंड पिनवान, ये फोर वर्ड्स हैं, दुनिया, फुनवान, पिनवान, बुनियान। तो इसमें नून साकिन के बाद या वाव आ रहे हैं या आ रहे हैं, असूलन तो इदगाम होना चाहिए, लेकिन इनको इदगाम के बगैर पढ़ा जाता है क्योंकि विद इन वर्ड इदगाम होता ही नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल आ रही है तो वो इदगाम नहीं होता। और यही फोर वर्ड्स हैं जिनमें हमारे पास एक वर्ड के बीच में ऐसे हरूफ आ रहे हैं जिनमें इदगाम होना चाहिए, लेकिन वहां पे इदगाम नहीं हो रहा। और इसको हम कहते हैं इजहार मुतलक, एब्सोल्यूट इजहार, इजहार मुतलक। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम यही तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट वीक हम इदगाम की कुछ और कैटेगराइजेशन देखेंगे, जो कि आई मीन एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे जहां पे इदगाम नहीं हो रहा, दो वर्ड्स के बीच में भी नहीं हो रहा। विद इन अ वर्ड तो हम देख चुके हैं कि ये फोर वर्ड्स हैं जिनमें नहीं हो रहा, लेकिन दो वर्ड्स की भी कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इदगाम नहीं होता, तो उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक रिव्यू करेंगे। ठीक है, आप अपने नोट्स खुद से प्लीज रिव्यू कीजिए ताकि जो है वो आप जब क्लास में हो तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। थर्सडे को मुलाकात करते हैं। बारकुम अल्लाह फीकुम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।